अमृत वाणी रामाश्रम सत्संग मथुरा के वेब रेडियो चैनल अमृत वाणी में आपका स्वागत है। दिनांक 26-27-28 मई 2018 को हजारीबाग भंडारे का आयोजन किया गया था। इस दौरान 27 मई को परम पूज्य संजीव भैया और परम पूज्य मोहित भैया के सानिध्य में शंका समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो आइए सुनते हैं इसी कार्यक्रम के संपादित अंश।
कुछ कुछ शंकाएं ऐसी होती हैं जो अटक जाती हैं, हमें अटकाव से आगे बढ़ने के लिए कभी कभी बाहरी सहायता की भी जरूरत होती है। तो ये महाराज से निवेदन है कि हम सबकी शंकाओं का समाधान करें। और ये पहला प्रश्न जो है मोहन प्रसाद यादव जी, तो गुरुजनों के मंच पर खड़े होने से पहले ही पंडाल में खड़े होना गुरुदेव की नजर में अदब है या बेअदब? मुझे ये लगता है कि गुरु महाराज ने गुरु और शिष्य की परिपाटी को हटाया इसलिए कि द्वैत उसमें रहता है। द्वैत से अद्वैत की तरफ गुरु महाराज हमको ले गए। उन्होंने कहा कि सखा मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, एक रिश्ता बना लो और उस रिश्ते में फिर अदब बेअदब वो एक अलग तरीका हो जाता है। तो हम परिवार में जब व्यवहार करते हैं तो वो अदब बेअदब से अलग है। प्रेम से जब व्यवहार होता है तो प्रेम में जब भाव होता है तो हम भाव के साथ अगर कुछ करते हैं तो वो सही है, और जो बिना भाव के अगर हम खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, उसका कोई मतलब मेरे समझ में नहीं आता। सिर्फ एक परिपाटी बना देने से, रूढ़ियां बना देने से हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रूढ़ियों को तोड़ के गुरु महाराज ने हमको एक नई चीज दी, वो एक सरल और सुगम तरीका बतलाया उस ध्येय तक पहुंचने के लिए। तो हमें फोकस जो है, हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम अपने ध्येय पर पहुंच रहे हैं या नहीं। बाकी की चीज़ें तो रस्ते की चीज़ें हैं। अगर प्रेम से हम बर्ताव करें लोगों से, तो व्यवहार अच्छा करेंगे तो वही हमें भी मिलेगा, लेकिन बाकी तो सब रूढ़ी बात है। बोकारो स्टील सिटी से दत्ताल साहब अगर हैं तो माइक यहाँ है कि मुझे कहा गया कि जिनका दर्शन हुआ उनका ध्यान करें। मैं जिया महान का ध्यान करती हूँ परंतु गुरु महाराज का ध्यान होने लगता है, क्या करें? तो जिया माँ का ध्यान करती हूँ परंतु गुरु महाराज का ध्यान होने लगता है। जो लोग जिया माँ का ध्यान करते हैं वो अक्सर ऐसा ही पाते हैं कि शुरू जिया माँ से, जिया माँ को देखा, उनका ध्यान किया और वो गुरु महाराज का ध्यान होने लग जाता है स्वतः। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ के जितने संत हैं, आप इस सिलसिले के अगर परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य पंडित जी महाराज, परम पूज्य मंझले भैया, परम पूज्य छोटे भैया, सब गुरु महाराज में मिले, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं वो ज़्यादा यहाँ उसके उतनी वो एक तरह से गौण है, क्योंकि जब सब एक में मिले हुए हैं तो वो चीज़ एक ही है। और ये अक्सर हुआ करता है कि हम एक से शुरू करते हैं और तो गुरु महाराज का अगर हम स्वतः ही उनके ध्यान में चले जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई तो बिल्कुल भी नहीं है, और ध्येय तो वही है। और गुरु महाराज ने हमको ये बतलाया कि गुरु शक्ति और ईश्वर शक्ति में कोई फर्क नहीं है, इसी भी रूप को हम लेके चलें, वो प्रकाश स्वरूप लेके चलना है, जहाँ से हम अपनी शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्येय हम सबका एक ही है, और उस ईश्वर स्वरूप में हमको खुद भी मिल जाना है। तो ध्यान उसका करना है जो उसमें मिला हुआ है, इसलिए कि हम उसमें जाके मिल जाए, उस प्रकाश स्वरूप। रीना सिन्हा जी रांची के, हमारे यहाँ अनेकों पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें त्यौहार से संबंधित विशेष देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे दशहरे में माँ दुर्गा, बसंत पंचमी पर सरस्वती माँ। तो क्या हमें महाराज जी के साथ साथ इनकी भी पूजा करनी चाहिए या सिर्फ महाराज जी की? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको दो तरीके से मैं देखता हूँ कि एक तो ये कि गुरु महाराज ने इस प्रश्न का जवाब आध्यात्मिक विषय मीमांसा में किया है कि जो हमारी, जैसे हिंदुओं के तो हजारों साल का एक इतिहास है, और उसमें बहुत ही रिसर्च भी की गई शास्त्रों में, उन्होंने तरह तरह की चीजें जो अध्यात्म यात्रा में पाई गई उनको देवी देवताओं के रूप में उन्होंने, मतलब जिस जिस आध्यात्मिक स्थिति का साधक, हर साधक जब आध्यात्मिक यात्रा करता है तो विशेष स्थितियां आती हैं, और हर स्थिति का हिंदू धर्म में एक देवी देवता बना दिया। अब उनका अपना स्थान है, लेकिन असली बात यह थी कि वो देवी देवता एक आध्यात्मिक स्थिति का स्वरूप है। तो ज्ञान का स्वरूप सरस्वती माँ है, और परम पूज्य जी छोटे भैया ने दुर्गा, जो नव दुर्गा में 9 दिन क्यों उपवास करना होता है उसके बारे में बतलाया। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हम देखें तो उनका अपना महत्व है, अपनी एक उसका कारण है, लेकिन ये सब रास्ते की ही चीज़ें हैं। तो जैसे कि गुरु महाराज ने किसी धर्म के बारे में ऊंचा या नीचा नहीं कहा, सबको इज्जत दी, सब धर्म और उनके पैगंबरों को इज्जत दी, तो हर देवी देवता की इज्जत हम करें, लेकिन जो असली चीज है, तो जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो जिसको भजेगा उसे पाए, अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तो सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ तो मुझे पा जाओ, देवी देवताओं की करोगे तो देवी देवताओं को पाओगे, भूत पिशाचों को करोगे तो उनको पाओगे, वगैरह वगैरह। तो हमें अगर परमात्म तत्व प्राप्त करना है तो उसी ध्येय की तरफ हम चलते रहें। एक और चीज़ आध्यात्मिक विषय मीमांसा में इस कॉन्टेक्स्ट में गुरु महाराज ने बताई कि जो व्यवहार है, जो चीज़ें घर में हो रही हैं उनको भी करते चलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों को अगर त्योहारों के बारे में बतलाना है, उसका क्या महत्व है, और उनके साथ बैठ के पूजा वगैरह करनी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। मंजू देवी जी पटना, उन्होंने गुरु महाराज को एक उनसे प्रार्थना लिखी है, तो हम सब उनकी जो समस्या है गुरु महाराज से हम सब प्रार्थना करें कि वो समस्या दूर हो। गाजीपुर से राम यादव जी,
जिसका हम पूछ रहे हैं, लिखा हुआ है कि बच्चे जो है पहला तो हमारे पास आते नहीं हैं, कुछ पूछने पर भी बताता नहीं है, उन समय के लिए हम घर बनवाते कुछ करता करता, तो हम अच्छा उन समय लिख रहे हैं तो 7 बजे तक। दूसरी बात जो है जो लड़कर लिखा गया है, तो सत्संग में आने के लिए बोलते हैं क्या हो, और खर्चा उर्चा जो होगा आगे गाड़ी भाड़ा हम दे देंगे, तो वो भी नहीं आता है, और पढ़ाई का सब है, तो उसका सब समाधान क्या है थोड़ा उसको बताइए। और अच्छा
तो पहला पार्ट क्या है, पहले क्या पूछा?
हाँ, और पूछे कि जो बकाल का बात बारे में बोलता है, बता रहता है, हम उन्हें नाराज हो तो हमारे पास आओ, हम समाधान तुम ही कुछ बोलो, हम उनको कर देंगे। तो इसके लिए सारा थोड़ा सा बताया कि उनको क्या कैसे साथ हो।
तो वो प्रश्न जो अक्सर हम लोगों के पास आता है कि पहली चीज तो ये कि हम जिन लोगों को अपना समझते हैं, बच्चे लोग और भी रिश्तेदार, वो लोग या तो सुनते नहीं है और अक्सर हम चाहते हैं उनको कि हमारी तरह वो भी सत्संग में आए, तो वो भी अक्सर नहीं सुनना करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो पहली चीज तो ये कि अगर हम उस परिवार में हैं, गुरु महाराज के परिवार में हैं, तो वो सब भी उसी परिवार में हुए, तो फिर आना जाना मतलब जब वो परिवार में हैं तो जहाँ हैं वो उनके, तो अब बात ये होती है कि वो हमारी क्यों नहीं सुन रहे। तो मैं दो एक बातें कहूँगा कि एक तो ये कि हम जो उनसे कह रहे हैं वो एक चीज़ है, लेकिन जो हम हमारा व्यवहार उनकी तरफ अब तक रहा उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रही होगी कि जिसकी वजह से ये दूरी पैदा हो। दूसरा, आजकल जो संसार में जैसी हवा बह रही है कि हर कोई दौड़ा चला जा रहा है किसी तरफ, अब ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लेकिन दौड़, कोई संसार में इज्जत चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई और कुछ चाहता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब गौण होती चली जा रही है। तो घर वालों की सुनना जो है वो उनके पास उसका समय ही नहीं। तो यही है कि गुरु महाराज से हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, जिन लोगों को हम चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर दें कि भाई गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दें, उनको जो जिस काम में वो लगे हुए हैं उसमें समृद्धि दें, और अगर कुछ आगे करने की अगर हम सोचते हैं, जैसे उनको सत्संग में भी लाने की बात होती है, तो गुरु महाराज ने खुद ये कहा कि अगर किसी को आप इससे लगाना चाहते हैं तो एक तो ये हो सकता है कि जब आप ध्यान में बैठें तो उनको बगल में बिठा लें और ऐसा देखें कि जो प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है वो उनके पास भी जाए, तो वैसे भी उनकी सेवा हो गई, और अगर उसका असर होगा एकदम नहीं तो कुछ समय बाद वो असर होगा तो वो भी छूट जाएंगे। दूसरी बात, मैं अक्सर ये कहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में भी देखी है कि जैसे घर में एक आदमी कमाता है और कई और लोग खाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके सब सत्संग में जाएं। अगर एक दो लोग जा रहे हैं तो वो जो कमा रहे हैं उससे बाकी लोग भी खाएं।
परम पूज्य मोहित भैया।
दूसरा, उनको जोड़ने के लिए मतलब उनको सत्संग के दौरान सेवा में लगाए, जैसे साप्ताहिक सत्संग है उसमें वो दरी वरी बिछाने प्रसाद बांटते हैं, और इतना करने से भी धीमे धीमे वो सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग को जानते हैं। थोड़ा सा पैसे भी जो सत्संग पहुंचता है तो उससे उनके विचार बदलते हैं, और बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं सत्संगी जो कहते हैं कि पहले मैं अपने पिताजी को या ससुर जी को बुलाता था और बाहर छोड़ के चला जाता था, दो तीन घंटे घूमता रहता था और फिर वापस आके उनको ले जाता था, लेकिन इतना करने से ही मेरे विचार बदल गए और मैं सत्संग से जुड़ गया। तो सत्संग से आप कैसे भी उनको जुड़े, फिर धीमे धीमे गुरु महाराज का आकर्षण उनको खींच लिया। ये अभिमन्यु सिंह रोहतास। तो पूजा में नींद आ जाती है, घर पे पूजा नहीं हो पाती, खेती बाड़ी और घर के काम में मन फंसा रहता है, शाम में सोते हुए गुरु वंदना करते करते कभी नींद आ जाती है और सो जाते हैं, पूजा रोज हो नहीं पाती मगर गुरु की याद दिल में बराबर बनी रहती है, भजन को गाकर मन को शांत करता हूँ, पूजा नहीं कर पाता। तो प्रभु जी छोटे भैया ने चिंतन पर बहुत जोर दिया, और तो गुरु की याद दिल में बनी रहती है, तो चिंतन जो है उस पर जोर इसीलिए दिया कि वो हमको वहीं तक पहुंचाता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ मिनट ध्यान करते हैं, गुरु महाराज ने कहा 15-20 मिनट सुबह शाम, तो उसका असर क्या होता है कि जैसे दादा गुरु महाराज कहा करते थे कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो सुरति की धार उधर की तरफ लगी रहना ऐसे हो जाता है जैसे हम पान खाते जाते हैं और बाकी काम होते रहते हैं, तो पान भी खाया जा रहा है और दूसरा काम भी हो रहा है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर हम इधर झुक जाएंगे तो हमारे बाकी काम खराब हो जाएंगे, तो उसके बारे में दादा गुरु महाराज का ये कहना था कि ये तो ऐसा है जैसे पान खाना, अगर पान अपना खाते रहो और बाकी काम करते रहो। तो चिंतन ऐसे ही है कि वो चलता रहे बाकी अपना सब होता रहे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से, सुबह शाम ध्यान करने से हमारी स्थिति है कुछ दिनों बाद ऐसी हो जाती है कि जब हम ध्यान नहीं कर रहे तब भी उनकी तरफ ध्यान रहता है, वही चिंतन है। तो अगर आप चिंतन ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर गुरु वंदना करते हुए या भजन गाते हुए अगर नींद आ जाती है या और काम करते रहने के टाइम भजन वजन चल रहे हैं तो उसमें बड़ी अच्छी बात है, सात्विक चीज़ है। हाँ, बस इतना है कि पूजा में नींद आना जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है, अक्सर आपने भी देखा होगा कि अगल बगल में खर्राटे शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान जो है वो तो चैतन्य सात्विक स्थिति, नींद जो है वो तामसिक स्थिति है। तो नींद से किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसमें बुराई नहीं है कि अगर बहुत थके हैं और ध्यान में बैठ के नींद आ जाती है तो ये एक अच्छी बात है। बहुत से लोगों को तो नींद ही नहीं आती है, तो इतना तो है कि नींद आ रही है आपको, लेकिन नींद और ध्यान में बहुत फर्क है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कुछ ही देर करें, इसीलिए सुबह शाम का समय बतलाया, लेकिन रात में गुरु वंदना गाते हुए या ध्यान में अगर सो जाएं, तो गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि वो सारी नींद जो है वो साधना में हो जाती है। गुरु महाराज ने लिखा है कि गॉड इज पावर और एनर्जी, गॉड इज नॉट फिजिकल अपीयरेंस, एंड एज पर एंशियंट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। So if someone has achieved, then how other people will be able to achieve? Since that energy is being achieved, more energy cannot be created. A Prashant Kumar, Jahanabad. So God is power or energy. So Einstein ne jo baat kahi ki energy and matter can be converted back and forth. So there is power and energy within us too. We have power, we have energy, and then we have lot of things, for example, in our brain, which are dormant. So to enable our capabilities and capacities, we have to connect to that energy. So jaise hum urja ke srot se jab connected ho jate hain, to jab surya ka prakash, usse agar hum dekhen to prakriti mein jo sab jaise faslein ugti hain, तो उसमें बारिश वारिश भी चाहिए लेकिन सूर्य की भी ज़रूरत है। हमें बहुत सारे काम जो हैं वो सूर्य की शक्ति से, सूर्य की एनर्जी से हो रहे हैं। तो वही चीज़ अध्यात्म में भी है कि उस एनर्जी सोर्स से अपने को कनेक्ट करना, उस ऊर्जा के सोर्स से जब हम अपना कनेक्शन बना लेते हैं, उससे जब हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंतर की जो सुषुप्त चीज़ें जो अभी तक जैसे कुंडली जागरण की बात होती है, हमारे यहाँ वो नहीं होता, मगर उस तरह से हम इस साधना में भी, जैसे कुंडली जागरण में कई स्थितियां आती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी स्थितियां तो हमारे यहाँ भी आती हैं, बस उसका उस तरीके से उसको नहीं देखा जाता या बतलाया जाता। तो अपनी स्थिति को बदलने के लिए हमें जैसे ऊर्ध्वगमन करना है, हमको पहाड़ पे चढ़ना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? या तो अपने आप में से उसको जनरेट करो या किसी और सोर्स से ले लो। तो हमारा जो साधन है वो ये है कि जहाँ पे ऊर्जा है उससे अपने आप को कनेक्ट करो और उस ऊर्जा से अपने आप को ऊंचाओ।
परम पूज्य मोहित भैया,
तो इसमें प्रश्न ये भी है कि गॉड हैज नो फिजिकल अपीयरेंस। तो जैसे अगर आप सागर को डिस्क्राइब करना है तो पॉसिबल नहीं है और उसकी कोई ऐसी अपीयरेंस भी नहीं है। और अगर सागर में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो सागर में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और जो उस बाल्टी का पानी है उसमें सागर के सारे गुण भी हैं, केवल जो विशालता और व्यापकता और वो जैसे कि बहुत सारा पानी होता है तो उसके जो बल है वो अलग होता है, लेकिन बाकी गुण समान ही होते हैं। और जैसे हम सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा पूर्ण है और आत्मा भी पूर्ण है और पूर्ण से निकलने वाला अंश भी पूर्ण, तो ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी ने उस पावर को प्राप्त कर लिया तो दूसरा उसको नहीं कर सकता। वो कभी खत्म नहीं होती और हम है ना उसी जैसे बात हुई थी नहीं कि वो हम पावर हाउस से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर भी उतनी ही पावर होती है जितना वोल्टेज सप्लाई तक लाइन में, तो सबको बराबर पावर प्राप्त होती है।
तो उमेश प्रसाद केसरी गया तो मैं इस दरबार में बाल्यावस्था से संग में आना जाना कर रहा हूँ, साधना में सुबह शाम बैठ पाता हूँ। प्रथम बार परम पूज्य छोटे भैया का दर्शन किया, उन्हीं का ध्यान, क्या यह सही है? और साधना नहीं कर पाता, क्या मेरा उद्धार होगा? कृपा बताएं।
परम पूज्य मोहित भैया,
हमारे यहाँ की जो साधना है वो परम पूज्य छोटे भैया बतलाते थे कि वो बिना डिस्प्ले की लिफ्ट के समान है। उसमें हमें ये पता नहीं पड़ पाता कि हम आज किस स्तर पर हैं। इसीलिए सबने यही बतलाया कि आप अपना स्वाध्याय करें कि आपके विचार और कर्म वो पहले से सुधर रहे हैं। जो ईश्वरीय गुण बताए गए हैं कि दया करुणा प्रेम आदि, वो आपको अपने जीवन पर दिखलाई पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा है, आपको लगता है कि मेरे विचार सुधर रहे हैं, तो इसका मतलब है साधना सही चल रही है और आपने परम पूज्य छोटे भैया के दर्शन किए और उनका ध्यान करते हैं, तो वो खुश है।
मैं परवीन कुमार जिनारा जमुई से बोल रहा हूँ। सुबह शाम जो ध्यान करते हैं हम लोग, तो सुबह शाम ध्यान करने से पहले गुरु अष्टकम बोल करके करना चाहिए या वंदना करके बोलना चाहिए, ध्यान में जाना चाहिए?
अक्सर जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न जो है, अगर उनको हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दें तो उस प्रश्न का जो है वो समाधान स्वयं ही हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ध्यान एक अवस्था है, उस ध्यान में हमें अपने मन को बांधना, तो पहली चीज तो ये कि मन तो बंधता नहीं तो कैसे बांधा जाए, उसी के लिए सारा प्रपंच है। अब आप उसमें पहले प्रार्थना कर लें तो थोड़ा सा मन बंधे, गुरु अष्टक या और कोई मंत्र जाप कर लें तो शायद थोड़ा मन बंधेगा। तो ये तो सिर्फ प्रिपरेशन है, असली चीज तो बात। अब उसमें गुरु महाराज ने कहा कि बाकी सब चीजों को छोड़कर प्रकाश का ध्यान करो, तो ये गुरु अष्टक और प्रार्थना और ये सब तो पीछे रहे, असली चीज जिसपे हमें फोकस करना है वो। अब कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं इसका ध्यान करूं या मैं उसका ध्यान करूं, या तो प्रकाश हमें लेना है, जिससे लेना है वो तो शुरू की बात है, लेकिन असली चीज तो गुरु महाराज ने बतलाई कि प्रकाश, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं। तो हम इस सोर्स से लें या दूसरे सोर्स से लें, उसी में अटके हुए, हम स्थूल में ही अटके हुए हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए, प्रिपरेशन में ही अटके हुए हैं। गुरु महाराज ने हमें क्या कहा कि हट योग भी एक तरीका है, ज्ञान योग भी एक तरीका है, उपासना योग भी एक तरीका है। गुरु महाराज ने उसकी थोड़ी मिलौनी सब की करके हमें एक साधन बतलाया जिसमें कि मन को पहले बांधो तो बाकी चीजें वैसे सुधर जाएंगी आगे और पीछे। तो अपने आप को जो प्रिपरेशन है, यानी जब हम ध्यान के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, लेकिन जो ध्यान गुरु महाराज ने बतलाया वो ये है कि वो सब को छोड़ दे, मेरे प्रकाश रूप, यानी प्रकाश रूप गुरु ईश्वर का ध्यान, बस उसके अलावा कोई चीज नहीं रहनी चाहिए ध्यान। तो लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान इसमें बनता नहीं है, इसलिए आगे और पीछे प्रार्थना। हाँ, एक 11 वर्षीय बच्ची का भी प्रश्न है, उसको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। आत्मा के बारे में और मृत्यु, मृत्यु के पश्चात, जयपुर में भी बच्चों के साथ एक प्रोग्राम किया था, तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े लोग नहीं पूछते, आजकल बच्चे लोग बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं।
और अब एक भजन रूपा चटर्जी का गाया हुआ।
मेरी करुणा
सबसे यही निवेदन है कि वॉलंटियर से पूछ लें कि वो शंका समाधान जो संडे को, तो उसका फोन नंबर ले लें और भी कोई प्रश्न हो तो इनको दे दीजिए और फिर हर संडे को वो प्रोग्राम रहेगा, तो उससे जुड़ने की कोशिश करें।
शंका समाधान के लिए एक टोल नंबर है 0803392 3817। ये शंका समाधान का यह उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह के प्रश्न पूछना है या भैया जी से वार्तालाप करनी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर को डायल करिए। वहाँ पर उपस्थित वॉलेंटियर्स आपको उस प्री कॉन्फ्रेंस में और भैया जी से बात करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे और किस तरह से जोड़ा जा सकता है वो बताएंगे।
तो ये तो था हजारीबाग भंडारे के दौरान 27 मई 2018 को आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम के संपादित अंश। और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।